ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। महासमुंद जिले में आज 9 महिला सहित 15 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज से मनाया जा रहा है जन औषधि सप्ताह। रायपुर में आयोजित विकसित भारत युवा संसद में युवाओं ने लोकतंत्र की मजबूती और नागरिक दायित्वों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। और मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के कुछ जिलों में अगले 12 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। महासमुंद जिले में आज 9 महिला सहित 15 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि इन सभी माओवादियों पर कुल 73 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनमें स्टेट कमेटी सदस्य विकास भी शामिल है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
आज कुल 15 जो उड़ीसा स्टेट कमेटी में जो बड़गढ़ बलांगीर और महासमुंद डिवीजन के जो 15 सशक्त माओवादी हैं अपने हथियारों सहित, जिसमें AK-47 SLR इंसास 303 और 12 बोर हैं, कुल 14 हथियार हैं और साथ साथ में इनके ऊपर कुल 73 लाख टोटल रिवार्ड इनके ऊपर घोषित है। इसमें प्रमुख रूप से जो विकास है स्टेट कमेटी मेंबर है, साथ में 2 डिविजनल कमेटी मेंबर और अन्य ACM और पार्टी मेंबर है। और जो स्टेट कमेटी विकास उप सुदर्शन है इनके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है।
आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार के पुनर्वास कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि इस आत्मसमर्पण के बाद माओवादियों के ओडिशा स्टेट कमेटी का पश्चिमी सब जोन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ओडिशा का संबलपुर रेंज भी नक्सल मुक्त हो गया है। गौरतलब है कि बैनर पोस्टर के अलावा अन्य माध्यमों के साथ ही आकाशवाणी के माध्यम से भी माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की गई थी। इधर सुकमा जिले में आज सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने ताड़मेटला और जगरगुंडा के जंगलों में माओवादियों द्वारा बनाए गए शिविर से 20 किलो वजनी IED सहित विस्फोटक सामग्री और माओवादी साहित्य बरामद किया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल नागपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के धवाईपानी से कवर्धा होते हुए सिमगा तक लगभग 122 किलोमीटर लंबे सेक्शन को 4 लेन में उन्नत करने तथा कवर्धा बाईपास के निर्माण को स्वीकृति देने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने श्री शर्मा को जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने शर्तों के साथ सौम्या चौरसिया की जमानत को मंजूरी देते हुए कहा कि आरोपी जांच में सहयोग करेंगी और बिना अनुमति प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगी। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज से जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। 7 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश में सप्ताह भर जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित जन औषधि केंद्रों में भी विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में मरीजों को जेनेरिक दवाओं के लाभ, उनकी गुणवत्ता और मूल्य में अंतर की जानकारी दी जा रही है। वहीं कई स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे प्रमाणित जेनेरिक दवाओं को प्राथमिकता दें। गौरतलब है कि इस वर्ष की थीम जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर रायपुर स्थित विज्ञान केंद्र में हाइड्रो रॉकेट कार्यशाला और नाइट स्काई गेजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर और छत्तीसगढ़ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक M.K. बेग ने डॉ CV रमन की ऐतिहासिक खोज रमन प्रभाव को भारतीय विज्ञान की वैश्विक पहचान का आधार बताया। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल ज्ञान का विषय नहीं बल्कि नवाचार, तर्कशीलता और राष्ट्र निर्माण की सशक्त धुरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे वैज्ञानिक सोच को अपनाकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उभरते शोध क्षेत्रों में सहभागिता निभाएं। इस दौरान आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों को हाइड्रो रॉकेट का प्रत्यक्ष प्रक्षेपण करके दिखाया गया। भारत सरकार के खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। युवा संसद में शामिल होने लगभग 200 युवाओं ने अपना पंजीयन कराया था। आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सीख विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में युवाओं ने लोकतंत्र की मजबूती, संवैधानिक मूल्यों और नागरिक दायित्वों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। माई भारत के स्टेट डायरेक्टर अर्पित तिवारी ने युवा संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है ताकि वे लोकतंत्र की मजबूती में सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्होंने बताया कि जिला स्तर से चयनित शीर्ष 5 प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित नादिया के प्राचीन कबीर साहिब मठ में आयोजित अखिल भारतीय सद्गुरु कबीर संत सम्मेलन और 3 दिवसीय फाल्गुन महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मठ पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया और कबीर साहिब के विचारों को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया। इस अवसर पर श्री साय ने विभिन्न घोषणाएं की।
11 लाख रुपया के मांग होरी से तो आज तक पेंडिंग है, तो कर मैं घोषणा करता हूँ बहुत जल्दी वो 11 लाख रुपया के स्वीकृति हो ही और प्रतिवर्ष ये आयोजन ठीक से हो ओकर लिए भी हमन बजट में प्रावधान करबो ताकि ये सम्मेलन करे बर कोई दिक्कत मत हो। और बेटा बेटी मन के तरफ से मांग आई से कि हाँ खेल कूद बर अच्छा मैदान हो, स्टेडियम के निर्माण हो, तो कल मिनी स्टेडियम के भी मैं घोषणा करत हूँ।
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य और हीवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग की संस्थापक किर्सी हवेरिनेन अपने 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद वापस लौट गई है। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने बस्तर के विभिन्न अंचलों का भ्रमण कर ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय उत्पादों, महिला स्व सहायता समूहों की गतिविधियों और प्रकृति आधारित पर्यटन स्थलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में सामुदायिक सहभागिता से पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अपने प्रवास के अंतिम दिन उन्होंने बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा से मुलाकात कर अपने अनुभव साझा किए। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे धावकों ने हिस्सा लिया, जिनमें 4 आत्मसमर्पित माओवादी भी शामिल थे। पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित इस मैराथन में भिलाई के प्रतिभागियों ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में विधायक सावित्री मंडावी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेल समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजनों से युवाओं को सकारात्मक दिशा मिलती है। इधर भिलाई में आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर आयोजित जन जागरूकता रैली में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होली त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 70 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इनमें से 14 ट्रेनें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संचालित होंगी, वहीं 56 ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन से भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। दुर्ग हजरत निजामुद्दीन गोंदिया छपरा, दुर्ग मधुबनी और गोंदिया पटना होली स्पेशल ट्रेनों का ठहराव राजनांदगांव और डोंगरगढ़ स्टेशन में दिया गया है। वहीं गोंदिया छपरा स्पेशल, गोंदिया पटना स्पेशल और बिलासपुर चरलपल्ली स्पेशल ट्रेनों का भी ठहराव राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में रहेगा। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में आज 18 हाथियों के दल ने 3 ग्रामीणों के कच्चे घरों को तोड़ दिया, वहीं बाड़ियों में लगी फसल को भी रौंद दिया। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रही है। वन विभाग ने प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के कुछ जिलों में अगले 12 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके कारण प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे, वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खुले में रखे अनाज को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा एफटीसी और एफ यूपीएससी न्यायालयों के न्यायाधीशों, लोक अभियोजकों, जिला अभियोजन अधिकारियों और मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ के अधिकारियों के लिए आज विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धमतरी में आज हुई जल उपयोगिता समिति की बैठक में आगामी रबी फसलों की सिंचाई के लिए गंगरेल बांध से पानी छोड़ने की रूपरेखा तय की गई। रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आज फुल स्केल इमरजेंसी ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें CISF, अग्निशमन दल और स्वास्थ्य विभाग के दल ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आज प्रदेश में DTP ऑपरेटर और ग्राफिक्स डिजाइनर पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। रायगढ़ जिला प्रशासन और खनिज विभाग की टीम ने आज खरसिया क्षेत्र में कोयले का अवैध परिवहन कर रहे 4 ट्रकों को जब्त किया है और राजनांदगांव दुर्ग मार्ग पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महासमुंद जिले में आज 9 महिला सहित 15 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज से मनाया जा रहा है जन औषधि सप्ताह। रायपुर में आयोजित विकसित भारत युवा संसद में युवाओं ने लोकतंत्र की मजबूती और नागरिक दायित्वों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के कुछ जिलों में अगले 12 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।